السلام علیکم خواتین حضرات، گزشتہ دو تین اتوار پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے غور و فکر پر، درمیان میں پھر وہ کچھ دوسرے ایک دو موضوع چل نکلے. ہم ڈسکس اس بات کو کر رہے تھے کہ یہ جو چیز ہم بچپن سے اب تک سنتے آئے ہیں اور حدیث ہے، یہ حدیث ہم سنتے آئے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے. اگر آئینے میں ہمیں شکل اپنی دکھائی دے جائے تو ہم فوری طور پہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں. ہمیں اپنے نام کا بھی پتہ ہے، اپنے خصائل کا بھی پتہ ہے، اپنی اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز کا بھی پتہ ہے. تو پہچانتے تو ہیں، اس پہچان کے باوجود ہم رب کو کیوں نہیں پہچان پاتے؟ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور ہمارے جسم کی جو فارمیشن ہے اس پر بات آنے کے لیے کہ اگر ہم اس پہ ہی غور کر لیں کہ ہمارا سر جو ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ سنگل یونٹ ہے، تو اس کی فارمیشن 55 بونز سے ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے 55 پیسز آف بون. اور حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چوٹ لگنے سے کوئی حصہ اس کا کریک ہو جائے تو اس سے پورے سر کو نقصان نہ پہنچے بلکہ صرف اتنا ہی پیس ڈیمیج ہو جس کو بعد میں ریپیئر کر لیا جائے، اس لیے کہ اس کاسائے سر میں ہمارا نرو سینٹر ہے. اور اگر کہیں وہ نرو سینٹر ہمارا ڈیمیج ہو گیا تو پورا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے. اسی طرح تمام جسم میں رب تعالیٰ نے 247 ہڈیاں انسان کے جسم میں رکھی ہیں جس سے انسان چلتا پھرتا ہے، اس میں سختی ہے. ان بونز کی حفاظت کے لیے ان کے ارد گرد گوشت منڈ دیا اور اس گوشت کے درمیان میں سے بلڈ سرکولیشن کے لیے مختلف سائز کی، مختلف ڈسکرپشن کی وینز رن کی ہیں تاکہ وہ ایک مخصوص فاصلے تک رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ جائیں. ہمارے جسم میں 527 عضلات ہیں، مسلس 527 مسلس، اور ان میں سے کچھ مسلس والنٹیئر ہیں، انہیں برین سے کسی سگنل کا انتظار نہیں ہوتا، وہ آٹومیٹکلی کام کرنے لگتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ کس طرح وجود میں آئیں، کان کی ساخت پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے کان کی ساخت ایسی کیوں رکھی رب تعالیٰ نے، تو اگر ان چیزوں پر ہم غور کرنے لگیں تو رب کی قدرت اور اس کی صناعی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کی ہے. اس طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی جسم میں رب تعالیٰ نے جو حیوانی روح رکھی، حیوانیت کا جذبہ رکھا، وہ چار چیزوں پر ہے: خون، بلغم، صفرا اور سودا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، لوگوں سے سنا ہوگا کہ یہ جو سفلی علم کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں، وہ عام طور پر خون سے تحریر کرتے ہیں چیزیں. وہ خون سے تحریر کیوں کرتے ہیں اس کی سمجھ اب آئی ہوگی کہ انسان کے جسم میں جو، اس کو ہم روحانیت میں روح حیوانی کہتے ہیں، اصل میں وہ حیوانی جذبے ہیں جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں. تو وہ حیوانی جذبے، اس میں جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ خون ہے. چار اس کی بنیادی انگریڈینٹ ہیں جس میں نے ابھی عرض کیا: خون، بلغم، صفرا اور سودا. تو جب یہ काले इल्म वाले या सिफली इल्म वाले कोई चीज आपको लिख कर देते हैं या कोई अमल करते हैं तो उसमें खून उसका लाजमी हिस्सा होता है। इसी तरह हमारे यहां जो तरीका इलाज बहुत अरूज जिसने पाया वो हिकमत थी। आज से 300 साल 350 साल पहले इस तरीका इलाज को बहुत अरूज हासिल था। ये लोग इस पर तहकीक करते रहते थे। तहकीक जहां भी होगी और फिक्र जहां भी होगा वहां तरक्की होगी। तो हिकमत में बहुत बड़े पैमाने पर तहकीक होती रही। नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े माइंड बॉगलिंग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट सामने आ गए। लेकिन फिर मुगलिया दौर जो जो जवाल को गया उसके साथ साथ हिकमत भी खत्म होती रही। हत्ता के अब गुज़श्ता 200 साल से इस पर तहकीक का सिलसिला बंद हो गया जिसके नतीजे में अच्छा हकीम अब नहीं मिलेगा। तो अच्छा हकीम जिस जमाने में एक तरीका इलाज अपने अरूज पर था तो वो भी इंसानी जिस्म में इन चार इंग्रेडिएंट्स पर काम करते थे और खासतौर पर सफरा और सौदा पर। तो वो इंसानी नब्ज से अंदाजा लगाते थे कि इसकी तबीयत में सफरा ज्यादा हो गया है या सौदा ज्यादा हो गया है, बलगम पैदा हो गई है जिस्म में। तो वो इसको कंट्रोल में रखते थे। वो दवाएं ऐसी देते थे जिसकी चार ही सिफतें कह लीजिए कि या तो वो मोतदल मजाज की होती थी या उनका मजाज गर्मी की तरफ मायल होता था, खुश्क होता था या तर होती थी। ये हिकमत में टर्मिनोलॉजी चलती रही। तो करते क्या थे कि इन चीजों को एक कंट्रोल में रखते थे ताकि इंसानी जज्बात पर यह हावी ना हो जाएं और वो हैवानियत की तरफ न चल निकले। तो इनको कंट्रोल रख के इंसान की जो इंसानी सिफात हैं जो फरिश्तों से आगे हैं उनको मौका देते थे कि वो काम में आ जाएं। ये आज अगर मौजू से हट की बात है लेकिन वो मेरे जहन में एक बात आई कि मैं अर्ज कर दूं कि ये हिकमत का खेल क्या था। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा हकीम रूहानी शख्सियत भी होता है, या यूं कहिए कि रूहानियत के बगैर हिकमत की नहीं जा सकती। उसकी वजह यह थी बुनियादी कि वो काम करते थे इंसान की मजाज की इन चार चीजों को और इसको कंट्रोल में ले आते थे जिससे उसके हैवानी जज्बात दबे रहते थे तो इंसान तंदुरुस्त दिखाई देता था। अगली चीज है जमीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, जो हमारा एक तरह से बिछोना है। कभी इसकी साख पर अगर हम नजर डालें और फिर ये देखिए कि रब ताला ने इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे लिए छुपा दी, और ये वो खजाने हैं जो कयामत तक इंसान के काम आते रहेंगे खा वो तरक्की के किसी मंजिल पर चला जाए। जो जो इंसान साइंस में तरक्की करता चला जाएगा और डिस्कवरीज करेगा बहुत सी, तू तू जमीन के अंदर जो अल्लाह ने खजाने छुपाए हैं उनको निकालेगा और अपने इस्तेमाल में ले आएगा। तो रब ताला की हिकमत ये देखिए कि जब इंसान को पैदा किया तो कयामत तक जिन चीजों की उसको जरूरत पेश आएगी वो जमीन के अंदर पहले ही से बनाने के सामान रख दिए। पेट्रोल का इस्तेमाल हमारे यहां 1850 के बाद शुरू हुआ है पेट्रोल का इस्तेमाल, लेकिन क्रूड ऑयल जब से जमीन बनी है तब से बन रहा है। अगरचे इसके बनने में बहुत वक्त लगता है, इसके बारे में कहा यह जाता है कि जो क्रूड ऑयल है तेल ये आमतौर पर उन इलाकों में पाया जाता है जहां किसी जमाने में समंदर होता था और वहां से अब वक्त के साथ साथ हट गया। तो तो ये आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं कि तेल पैदा कैसे होता है। वक्त के साथ साथ जो नबातात हैं, वेजिटेशन है, वो और मिट्टी, गर्द, कूड़ा करकट, ये जमा होता रहता है और वक्त के साथ साथ वो उसके ऊपर मिट्टी जमती चली जाती है। नतीजा ये होता है कि वो कई सदियों में इतनी ज्यादा तहें जम जाती हैं उस पर मिट्टी की कि वो सॉलिड रॉक्स बन जाती हैं। वहां सॉलिड रॉक्स बनने के बाद हवा का गुजर बिल्कुल बंद हो जाता है और उस पर जो मिट्टी जमी है वो कई हजार टन के हिसाब से कंप्रेशन देती है उस नबातात पे। तो हीट विद कंप्रेशन ये मिलकर उस वेजिटेशन को, जानवरों के ढांचों को, पत्थरों को इस तरह से फॉर्म कर देती है कि वो एक गाढ़े स्याल की सूरत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर वेजिटेशन भी है और हैवानों के ढांचे भी हैं, तो वो उसमें हाईली इन्फ्लेमेबल हो जाता है वो। तो यूं ये कई सदियों में तेल बनता है और फिर उस तरफ को ये चलना शुरू कर देता है जहां इसे ढलान मिलती है और कहीं कहीं दर्जें इसे मिलती हैं, उनमें से पास होता हुआ ये इधर-उधर अंडर प्रेशर जाता रहता है, हत्ता के कहीं एक डिप्रेशन जमीन के अंदर उसको मिल जाए तो वहां ये तालाब की सूरत में जमा हो जाएगा। तो इंसान ने 1850 में इसे निकालना शुरू किया, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया 40,000 साल पहले, रूहानियत में हम इसे 40,000 ईयर्स कहते हैं, लेकिन साइंस इसे कहती कि ये कई हजार लाख साल पहले वजूद में आई थी। तो अगर रूहानी फिक्र को भी ले लें तो रब तआला ने 40,000 साल पहले इंसान को पैदा किया था और उससे पहले ये चीजें वजूद में आ चुकी थी। तो ये रब तआला की हिकमत पर जब आदमी गौर करता है तो उसे रब समझ में आने लगता है कि रब की कुदरत है क्या। सोना इसी असूल के तहत बनता है, लेकिन क्या हिकमत है रब तआला की कि सोना खालिस हालत में कभी नहीं पाया जाता, वो हमेशा दूसरी मेटल्स के साथ मिला हुआ होता है। कीमती पत्थर हैं, इनकी जरूरत आज इंसान को पड़ी है, रब तआला ने ये हमें कई लाख साल पहले प्रोवाइड कर दिए थे। तो इन चीजों को जब हम गहराई से देखते हैं तो फिर रब पहचाना जाने लगता है कि रब कितना बड़ा है। तो ये गौरव फिक्र जो है, इसलिए रब तआला कुरान में भी जोर देता है, गालबन सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 40 है शायद, तुम गौरव फिक्र क्यों नहीं करते हैं, आयत नंबर शायद सही याद ना हो इस वक्त मुझे, लेकिन गालबन ये 44 है या 40 है। तो रब भी दावा दे रहा है इंसान को कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, फिर जो औली अकराम गुजरे उनका एक वतीरा ये रहा, जैसे हजरत मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया कि इंसान पर लाजिम है कि वो रब ताला की जमीन पर घूम फिर कर उसकी कुदरत का मुशाहिदा करे। वो यही मुशाहिदा है गौर व फिक्र का, जो जो आदमी सफर करता है मुख्तलिफ चीजें उसके सामने आती हैं, उन चीजों पर गौर व फिक्र करता है तो अल्लाह की कुदरत का अदराक होने लगता है उसे, और रब ताला पर ईमान पुख्ता भी होता है और ये देख करके हमारी पैदाइश से कहीं पहले उसने ये चीजें प्रोवाइड कर दी थी हमें, हमारे दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होते हैं और जहां शुक्रगुजारी आती है वहां इताअत जरूर आती है। तो यूं रब की इताअत की तरफ चला जाता है, ये हिकमत है जनाब हज़रत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब के फरमान में। अगर हम ये चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पे तरक्की करें तो मेरा ख्याल ये है कि हमें चाहिए कि हम जो चीज भी देखें उस पर गौर जरूर करें, रोजाना एक चीज पकड़ के उस पर गौर करना शुरू कर दें। और जो जो हम उसकी गहराई में उतरेंगे तो हमें हैरत होगी कि खुद हम कितना जानते थे जिसका हमें नहीं पता था। तो अंदर छुपा हुआ इल्म हमारा वो बाहर आने लगता है। दरहकीकत होता यह है कि हमारा जहन काम करने लगता है, तो यूं हमें चीजों का अदराक होगा और हम रूहानियत की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। एक और बात जो अक्सर हजरात मुझसे फरमाते रहते हैं, गरचे वो मेरे लिए एक लतीफा ही होता है और उसमें शर्मिंदगी का एहसास भी, कि आप जैसे नेक लोग मुझ जैसे गुनाहगार से ये पूछते हैं कि नमाज में दिल कैसे लगेगा। नमाज हम पढ़ते हैं तो खशू खजू कैसे आएगा। अब एक आदमी जो नमाज के स्पेलिंग से भी वाकिफ नहीं, वो कहां से आपको बताएगा कि खशू खजू कैसे पैदा हो जाए आपकी नमाज में। इंसान को नमाज के खुशू खुजू से दो ही चीजें दूर कर देती हैं, एक तो खारजी है और दूसरी दाखली। खारजी चीजें तो बड़ी सादा सी हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इत्तफाकन हमारी नजर किसी खूबसूरत चीज पर जो उस कमरे में पड़ी है उस पर चली गई, तो हमारी तवज्जो उधर को अट्रैक्ट हो गई। उसका बड़ा आसान सा इलाज है कि हम उस चीज को वहां से हटा दें। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कई बार ये अमल फरमाया। एक बार किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में निहायत उम्दा खूबसूरत कपड़ा हदिया किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया, उसे सिला के पहन लिया। नमाज पढ़ रहे थे तो उस कपड़े पर नजर पड़ी, जहन उसकी खूबसूरती की तरफ चला गया। तो नमाज खत्म करने के बाद पहला काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि वो लिबास फौरन उस आदमी को लौटा दिया जिसने हदीयतन पेश किया था कि ये मुझे नमाज से हटा रहा है, इसको ले जाओ। इसी तरह एक बार चमड़े का एक नया तस्मा अपने जूते में लगाया था तो जूते पर नमाज पढ़ते हुए नजर पड़ी, तो नतीजा ये हुआ कि नमाज सफारी होते ही अपने जूते जो पहला शख्स नजर आया उसको तोहफतन दे दिए। तो ये खारजी चीजें इंसान को नमाज में तवज्जो नहीं होने देंगी, क्योंकि जहां हम नमाज पढ़ रहे हैं अगर वहां कोई खुशनुमा चीजें, कोई इंसान आ जाएगा, कोई म्यूजिक बजेगा, तो हमारी अटेंशन रोजो को डाइवर्ट होती है। इसे हम खारजी वजूहात कहते हैं। उसका आसान तरीन तरीका यह है कि इन चीजों से हट जाया जाए। आज एक चीज और हमारी समझ में आ जाएगी कि आमतौर पर ये फकीर लोग तंग जगहों पर क्यों नमाज पढ़ते हैं। जितना कुशादा कमरा होगा जिसमें हम कुशादा कमरे में नमाज पढ़ेंगे तो हमें डिस्ट्रेक्शंस उतनी ज्यादा मिलेंगी, हमारी तवज्जो नहीं बंधेगी। जितनी छोटी और कम रोशन जगह पर नमाज हम पढ़ेंगे उतना खुशू खुजू पैदा होगा। तो ये खारजी वजूहात हैं उसकी, तो उसको तो हम आसानी से दूर कर लेते हैं। ज्यादा मुश्किल उस वक्त आती है जब दाखली वजूहात इसमें आ जाएं कि हमारा कोई जज्बा है, कोई याद है, कोई फिक्र है, कोई जरूरत है जो जहन से महव नहीं होती। नमाज में भी दिमाग उधर को रहता है। एक चीज आप बचपन से सुनते आए होंगे, हुक्म यह है कि अगर खाने का और नमाज का टाइम इकट्ठा आ गया तो पहले इंसान खाना खा ले फिर नमाज पढ़े। या एक चीज और कही जाती है कि अगर इंसान के जहन में कोई ऐसा जुमला है जो वो कहना चाह रहा है, नमाज का वक्त आ गया, तो पहले वो बात कह दे फिर नमाज पढ़े। उसके पीछे हिकमत सिर्फ इतनी सी थी कि अगर हमारी भूख, हमें भूख लगी है तो हमारा जहन भूख की तरफ मतवज्जो रहेगा, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं आएगी हमारी। तो उस वजह को दूर करने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया कि पहले खाना खा लो फिर नमाज पढ़ो। इसी तरह अगर कोई बात हमारे जहन पर सवार हो गई है तो पहले हम वो बात कर लें, वो बात कह दें, ताकि ज़हन से निकल जाए हमारे। यहां तक तो आसान है काम, बाज़ यादें ऐसी होती हैं, बाज़ फिक्र ऐसे होते हैं जो इंसान को नमाज में भी तंग करते हैं, तो उसके लिए और हल है उसका कि उस चीज को छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए पहले, ताकि उसकी फिक्र खत्म हो जाए। अगर चाहिए तर्क करना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसे तर्क कर दीजिए तो नतीजा ये होगा कि हमारी खुशू पैदा हो जाएगा हमारी नमाज में। ये कुछ सवाल हैं मुख्तलिफ साहबान के दिए हुए। किसी साहब ने सवाल किया है कि मादियत परस्ती किस हद तक जायज है, अगर जायज नहीं तो फिर क्या इंसान को सिर्फ तकदीर पर इक्तफा करना चाहिए? मुसलमान तकदीर पर इक्तफा नहीं करता कभी। यहां कई बार ये बात हुई, मैंने यही अर्ज किया कि रब ताला को सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो मुजाहिदों की तरह हर वक्त अमल के लिए कमर कस के रखते हैं, या आसान लफ्जों में ये कहिए कि रब ताला को वो लोग पसंद हैं जो सुस्त नहीं है, काहलुल वजूद नहीं है, बल्कि जद्दोजहद और मेहनत करते हैं। तो तकदीर पर इक्तफा जो लोग करते हैं वह हाथ पांव तोड़कर बैठ जाते हैं, बेअमल हो जाते हैं। बेअमली का इस्लाम में कोई अमल दखल नहीं है, इस्लाम तो मेहनत करना सिखाता है। जहां तक मादियत परस्ती की बात है, मुझे नहीं मालूम इससे क्या मुराद है, लेकिन अगर तो मादियत परस्ती जिन साहब ने लिखा उनका मकसद ये था कि दुनियावी वसाइल पैदा करना, उनको हासिल करने की कोशिश करना, तो एक बहुत सादा आसान सी बात है हुजूर इसमें कि ये मुसलमान जान तोड़ मेहनत करता है कि उसे दुनियावी वसाइल मैक्सिमम हासिल हो जाए। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इंसान को अपनी हिम्मत की आखिरी हद तक जाके मादी वसाइल हासिल करने की के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसकी मेहनत के नतीजे में जो कुछ उसे हासिल हो जाए उसमें से अपनी जात पर तो कम से कम, और अपने डिपेंडेंट्स के जरूरियात जो जायज हैं उनको खुले हाथ से पूरा करके जो रिस्क बाकी बच रहे उसे अल्लाह के बंदों पर खुले दिल और खुले हाथ से खर्च कर देना चाहिए। अगर हमारे पास दुनियावी वसाइल नहीं होंगे तो हम अपने किसी रिश्तेदार, बहन भाई और दूसरे मुसलमान भाई के काम आ ही नहीं सकते। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है। मुसलमानों के लिए कुआं खरीद के दे दिया, मुसलमानों के लिए और दूसरे दुनियावी सामान, सिर्फ इसलिए कि उनके पास दुनियावी वसाइल थे। तो अगर हमारे पास दुनियावी वसाइल हैं तो हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को हेल्प कर सकेंगे। तो इसलिए मैं ये अर्ज करता हूं कि जितनी अल्लाह ने हिम्मत अता फरमाई है उसके आखिरी हद तक जाके दुनियावी वसाइल आदमी को हासिल कर लेने चाहिए, लेकिन जायज जराए से, ये बुनियादी शर्त है उसमें। दूसरा सवाल इनका इसी से मिलता जुलता है कि दुनिया में इंसान को कितना रच जाना चाहिए, जबकि मौलाए कायनात इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने दुनिया को 3 तलाकें दे दी। यही एक किस्सा मैंने अर्ज किया था कि अपने वक्त के गौस थे एक साहब जनाब हज़रत बहाउद्दीन ज़िकरिया रहमतुल्लाह अलैह, जो मुल्तान में आराम फरमा रहे हैं। ये बेपना अमीर इंसान थे, तो इनके हम असर दूसरे औलिया कराम इन्हें अक्सर बेशतर ये कहते रहते थे कि तुम कैसे वली अल्लाह हो कि जिसने इतनी दौलत जमा कर रखी है। आप जवाब नहीं देते थे इस बात का, लेकिन जब ये शोर शराबा बहुत ज्यादा हो गया तो फिर किसी वली अल्लाह का खत आया कि तुम कैसे फकीर हो कि तुमने इतनी दौलत जमा कर रखी है। तो आपने उस खत का बड़ा मुख्तसर सा एक जुमले का जवाब दिया कि मैंने दौलत जमा जरूर की है लेकिन उसे दिल में जगह नहीं दी। तो रब ताला ने इनकी बात को यूं सच कर दिखाया कि कुछ अरसे के बाद रियासत में कहर पड़ गया और गवर्नमेंट ने लोगों के लिए अपने गोडाउन के मुंह खोल दिए, लेकिन वो कहत इतना शदीद और इतना लंबा था कि गवर्नमेंट के गोडाउन खाली हो गए लेकिन कहत जारी रहा। तो लोग जब मरने लगे तो हज़रत बहाउद्दीन ज़किया रहमतुल्लाह अलैह साहब ने पूरी रियासत में मनादी करा दी कि हर शख्स अपनी जरूरत के मुताबिक मेरे गोडाउन से गल्ला ले सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो गल्ला तकसीम हुआ। उस वक्त तक होता रहा जब तक के कहत साली खत्म नहीं हो गई। तो औलिया इकराम की समझ में आया कि वो जो जवाब दिया था कि मैंने दौलत जमा जरूर की है लेकिन उसे दिल में जगह नहीं दी, तो इंसान को दुनियावी वसाइल जरूर हासिल करने चाहिए लेकिन दुनिया को दिल में जगह न दे, दुनिया से मोहब्बत न करे। हजरत अली करमला वजहो का ये जो फरमान है कि मैंने दुनिया को 3 तलाकें दे दी, उससे मुराद यही है कि दुनिया से मोहब्बत नहीं पाली है। अब आखिर पर इंसान ने दुआ के लिए मुझे हुक्म किया है कि मेरे लिए और मेरे वालिद साहब के लिए खसूसी दुआ फरमा दें। मैं जरूर दुआ कर दूंगा अगर इस गुनाहगार की दुआ कबूल हो जाए, लेकिन अगर अपना नाम और वालिद साहब का नाम मुझे दे देते आप, तो अगरचे मैं पढ़ता नहीं उस नाम को लोगों के सामने, तो मैं नाम लेके दुआ कर देता। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो तरकीब खसूसी की है ये मेरी समझ में आज तक नहीं आई। मैंने बतीरी टकरें मारी कि कश्फ के जरिए अल्लाह मुझे दिखा दे कि वो खसूसी दुआ क्या है, वीआईपी दुआ कहाँ है। वो मुझे नहीं दिखाई दी कभी, मुझे तो एक ही दुआ दिखाई देती है कश्फ में या हालत दुआ में। और ये आमतौर पर लोग आते हैं मेरे पास तशरीफ लाते हैं तो दुआ कराने के बाद जब दरवाजे से निकल रहे होते हैं तो एज ए पार्टिंग किक वो वहां से दरवाजे से आवाज देते हैं जरा खसूसी दुआ कर दीजिएगा। तो मैं यही परेशान होता रहता हूं कि ये कहां है वो खसूसी दुआ जो मैं कर दूं। भाई रब ताला एक है, दुआ भी एक है, नमाज भी एक है। अल्लाह के यहां वीआईपी सिस्टम नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा वो खसूसी दुआएं। ये किसी साहब ने पूछा है कि आपने मराकबे के मुतालिक फरमाया था, पूछना है कि क्या मराकबे के लिए वक्त और जगह की पाबंदी जरूरी है या किसी भी वक्त किया जा सकता है। बराहे मेहरबानी खाकसार को भी मराकबे की इजाजत मरहमत फरमा दें। हजूर बात यह है कि मराकबा किसी की मीरास तो है नहीं कि वो मुझे या आपको इजाजत दे, ये तो रब से राबता और रब की तरफ मुतवज्जो होने का, ये ज्यादा सही लफ्ज है कि रब की तरफ मुतवज्जो होने का एक जरिया है। और रब सबका है, रब की तरफ मुतवज्जो होने के लिए किसी की इजाजत की क्या जरूरत है आपको। अलबत्ता ये जो वक्त और मकाम का पूछा आपने, तो ऐसे वक्त पर मराकबा करना चाहिए जब दूसरी काम इंसान को ना हो, जब बिल्कुल फरागत हासिल हो जाए ताकि ज़हन उसका मुतमईन हो और यकसू हो सके। इसी तरह मकाम के बारे में इंसानी नेचर में है कि जहां वो कसरत से जाता है या बैठता है या जिस चारपाई पर लेटता है उस जगह इंसान के एहसाब रिलैक्स कर जाते हैं, और मराकबे में एहसाब का रिलैक्स करना बड़ी बुनियादी चीज है। अगर एहसाब में तनाव रहेगा तो मराकबा नहीं हो पाता। इंसान के एहसाब पूरी तरह रिलैक्स होने चाहिए, तो उसके लिए जरूरी यह है कि इंसान किसी फैमिलियर जगह पर बैठे। कोई एक जगह आदमी मुकर्रर कर ले, उस जगह जब रोज बैठेगा उसी वक्त पर, तो उसके एहसाब बहुत रिलैक्स रहेंगे, यकसुई बढ़ जाएगी। तो जिस वक्त चाहें आप मराकबा कर लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि मराकबा सिर्फ उस सूरत में करने बैठे हैं आप जब कोई और काम ना हो आपको। एक सवाल पूछा है कि रब ताला के इख्तियार मालिकुल मुल्क की वजाहत कर दें, अब इसी तो ये जुमले की बात है। सब बादशाहों का बादशाह आपने खुद ही फरमाया मालिकुल मुल्क, तो बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का वो शहनशाह है जो मालिक कुल है और कादर मुतलिक है, उसके इख्तियार तो कुली हैं, कोई चीज पीछे बचती नहीं। तो रब ताला के इख्तियारात की वजाहत तो सिर्फ इतनी ही है जो आपने खुद लिख दी। किसी साहब ने लिखा कि सूरह नूर में एक जगह आया है कि अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, उसने नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा हो, चिराग एक फानूस में हो, फानूस का हाल ये हो जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, और वो चिराग के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है जो ना शर्की है ना गर्बी, जिसका तेल आप ही आप भड़कता पड़ता हो चाहे आग उसको न लगे। इस तरह हर रोशनी अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है, वो लोगों की मिसालों से बात समझाता है, वह हर चीज से खूब वाकिफ है। एक जमाने में जब कायनात की तख्लीक के सिलसिले में यहां गुफ्तगू हो रही थी तो एक गुजारिश मैंने ये की थी कि जब रब ने ये कायनात बनाई तो उसने अपने नूर से दो हिस्से लिए थे और उस नूर से फिर आगे इंसान और दूसरी चीजें पैदा की थी। बहुत वजाहत से वो बात हुई थी और इसी जिम्न में एक बात मैंने ये अर्ज की थी कि जो रब ताला का अपना नूर है वो इतना चमकदार है कि जिस तरह से लोहे को अगर हम गर्म करें तो वो गर्म होने की आखिरी हद पर जब जाता है तो वो वाइट हो जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि रेड हॉट है, तो आखिरी जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको हम कहते हैं ये वाइट हॉट है। तो नूर इतना चमकदार है कि वो स्याही माइल हो गया है, ये चमक की आप में अपनी आखिरी हद को वो गया हुआ है। अब ये रब ताला ने जैसी जैसी मिसालें कुरान पाक में दी हैं, वो खुद भी सूरह नूर ही में उसने फरमाया हुआ है कि वो लोगों की मिसालों से लोगों को समझाता है। तो कहानियों के जरिए रब ताला ने बेपनाह चीजें हमें एक्सप्लेन की हैं, वो उसी को रेफर कर रहा है सूरह नूर में। अब इसकी वजाहत, अगर नूर की वजाहत आप चाहें तो उस पर मेरा ख्याल है कई एक इतवार बात होती रही हमारी, वो सीडीज में आपको मिल जाएंगे, उसको सुन लीजिए, उसमें पूरी वजाहत के साथ इस कायनात की तखलीक, अल्लाह ताला के नूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर, इन तमाम का जिक्र बहुत ही डिटेल से है। अगर मैं उसको दोबारा छेड़ूंगा किस्से को तो फिर कई इतवार उसी में चले जाएंगे, तो आप उसे पढ़ लीजिए या उसे सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला उसकी वजाहत हो जाएगी। अगर उसके बावजूद कोई नुक्ता रह जाए तो आप मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। ये एक सवाल है, ये इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे तो नहीं होऊंगा, मैं मुल्क से बाहर होऊंगा, लेकिन उससे नेक्स्ट संडे इंशाअल्लाह इसी पर बातचीत होगी और खासी तफसील से। मैं खुद भी चाहता था कि इस सूरह पर कभी बातचीत हो जाए। यहाँ सूरह फातिहा कुरान का एक अहम सूरह है जिसका आपने कई दफा जिक्र किया है, उसका नजूल कब और किस मौके पर हुआ उसकी बैकग्राउंड बता दें। ये बताना तो आसान है कि नजूल कब हुआ और किस मौके पर हुआ, लेकिन ये जो बैकग्राउंड आपने फरमाई ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सूरह फातिहा के बारे में मैं एक अर्ज किया करता हूं कि ये कुरान का दिमाग है, जैसे हमारा दिमाग हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिस्म के साथ इसे रब ताला ने गर्दन के जरिए से जोड़ा है। हमारा जिस्म यहां से शुरू होकर होता है, ये गर्दन दरमियान में ब्रिज का काम कर रही है, उससे सर जोड़ा हुआ है अल्लाह ने। तो इसी तरह सूरह फातिहा कुरान 29 सिपारों का हिस्सा नहीं है जो कुरान है, लेकिन उसके बावजूद ये कुरान का हिस्सा है। तो इसीलिए सूरह फातिहा हमेशा कुरान शुरू होने से पहले अलहदा सफ़े पर लिखी गई होती है और कुरान पाक अलिफ लाम मीम से शुरू होता है। वो इसीलिए कि ये सूरह कुरान का सर है, दिमाग है, ब्रेन है ये, और पूरे का पूरा कुरान इसमें समाया है। ये इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट संडे तो नहीं आऊंगा, उससे नेक्स्ट संडे इस पर हम बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही प्यारी सूरा है, इसकी फजाइल बेपनाह हैं। इल्मे हजूरी और इल्मे हसूली या अमूम इल्म में क्या फर्क है, अब ये इस पर भी बाकायदा दो इतवार सर्फ हुई थी, इल्मे हजूरी क्या है और इल्मे हसूली क्या है। जो चीजें पहले बयान की गई हैं, जो लोग पुराने आने वाले हैं उनके लिए बोरियत का सबब हो जाएंगी कि एक ही बात को रिपीट किया जाए। आप मुतलका सीडी सुन लीजिए, या अगर वो सीडी किताब की सूरत में शामिल हो गई है इन दो किताबों में, उसे पढ़ लीजिए। बहुत डिटेल में बयान किया था ये मैंने, इल्मे हजूरी और इल्मे हसूली। एक सवाल है कि मजहबी मसूफाना तजर्बे और नफसियाती मुशाहदे में कम फर्क है, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, एक चीज मुशाहदे पर मबनी है और दूसरी मफरूजात पर। नफसियात मफरूजात पर मबनी है, जबकि मजहबी और मसूफाना तजर्बे मुशाहदात पर मबनी है। एक एक्वायर्ड नॉलेज है और दूसरा मेहनत से कमाया हुआ नॉलेज है, इन दोनों ही में फर्क है, यही एक फर्क है। इसीलिए नफसियात की वो थ्योरीज जो आज से 100 साल पहले वैलिड गिनी जाती थी, वक्त के साथ साथ मतरूक होकर नई वहां थ्योरीज आ गई, जबकि मजहबी और मसूफाना तजर्बे जो पहले दिन से वही आज भी कायम है। आप तोरा उठा के उसका मुताला कर लीजिए, उसमें वही चीजें आपको मिल जाएंगी। आप जोरा उठा के उसका मुताला कर लीजिए, उसमें आपको वही चीजें मिल जाएंगी। आप बाइबल उठा लीजिए, वही चीजें हैं। कुरान पाक उन सब की तस्दीक करता है और उसमें एडिशंस करता है। और रफ्ता रफ्ता, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वेस्ट है जो ये इस पर तहकीक कर रहा है, और हर रोज किसी न किसी एक थ्योरी की कंफर्मेशन साइंस कर देती है, जबकि नफसियाती क्योंकि मफरूजात पर है इसलिए वो तब्दील होते रहते हैं। मेरे नजदीक तो यही एक फर्क है। किसी साहब ने एक सवाल पहले भी, शायद एक आधी बार पहले यही सवाल आया था कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश या इम्तहान का कैसे पता चलेगा कि ये परेशानी या बीमारी मेरे बुरे अमाल की वजह से है या आजमाइश। साहब मैं तो अल्लाह की आजमाइश से पनाह मांगूंगा, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं आजमाइश पर पूरा उतर सकूं। तो हर लम्हे मैं तो रब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूं कि या अल्लाह मुझे आजमाइश में न डालना, क्योंकि मेरे अंदर सकत नहीं, मैं बहुत कमजोर हूं। अल्लाह ताला इंतहाई मेहरबान है, बंदों को आजमाइश में नहीं डालता। अल्लाह बेपनाह रहीम और करीम है, वो जल्दी गुनाहों पर पकड़ नहीं करता, ढील देता है, माफ करता रहता है। टेस्ट इस तरह के तो जरूर आ जाते हैं कि अगर कभी मैंने गलती से ये कह दिया कि मुझे तो रब से प्यार है, मुझे दुनिया से प्यार नहीं है, तो उसी वक्त कोई आदमी आ जाएगा 10 रुपए मांगने मुझसे और मेरी रूह फना हो जाएगी कि वो 10 रुपए देने पड़ेंगे अब मुझे। तो ऐसी चीजें तो टेस्ट आते रहते हैं और इंसान को ऐसे अल्फाज मुंह से निकालने से परहेज ही करना चाहिए। अल्लाह ताला को हम पाकिस्तानी तरीके से ये कहते रहते हैं कि या अल्लाह मुझे तो बस तू चाहिए, तो रब्बी हमें जानता है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो इस बात को स्ट्रेट अवे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी तुम्हारा टेस्ट लेता हूं देखूं, तो हमारी चीखें निकल जाती हैं जरा सी बात में। एक साहब यहां तशरीफ लाए 1989 में शायद, तो उन्होंने कहा कि मुझे रूहानी इल्म चाहिए। पहली बात तो ये कि मुझे क्या मालूम रूहानियत क्या है, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि किसी शरीफ आदमी के पास चले जाएं जो आपको, जो खुद भी जानता हो और आपको भी इल्म दे दे, तो मैं क्या दूंगा जबकि मैं खुद ही बिल्कुल ही इसमें निकम्मा हूं। तो उन्होंने जिद की कि नहीं दे जरूर दें, तो मैंने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया, उनसे कहा कि इसमें आजमाइश आ जाया कर, और पहला एक्स जो गिरता है वो इंसान के फिनांसिस ही पर गिरता है कि दुनियावी वसायल कम होने लगते हैं बड़ी तेजी के साथ और फक्र फाका दौड़ दौड़ के आता है। उन्होंने कहा नहीं दुनिया मेरे पास बहुत है, आप उसकी फिक्र ना करें, आप सिर्फ मुझे इल्म दे दें जाइए। तो मुझे क्या कोई इल्म आता है, क्या कुछ पता है। तो ऐसे ही जो एक मुंह में लफ्ज आ गया तो मैंने कहा कि जाइए आप ये पढ़ लिया कीजिए, अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर लेगा। तो 3 हफ्ते के बाद तशरीफ लाया, उनका जी ये लफ्ज अपना पकड़िए आप, ये आपको मुबारक, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो फाकुम पर आ गया 3 हफ्ते ही में। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब मैंने तो अर्ज की थी आपसे, तो आप ही नहीं माने, आपने कहा कि नहीं अल्लाह का दिया बहुत है मेरे पास। तो अल्फाज इंसान को बहुत सोच समझ के जुबान पर लाने चाहिए, बाकी अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, उसकी रहीमी और करीमी का अंदाजा इसे कर लें कि मुझ जैसा गुनाहगार और सरकश इंसान भी उसकी जमीन पर बड़े मजे से चलता फिरता है, मजे की जिंदगी गुजारता है। तो अगर वो मुझ जैसे गुनाहगार को पाल सकता है तो फिर आप जैसे नेकों को तो सीने से लगाएगा। कुरान करीम में है कि कयामत जब बपा होगी तो आसमान फट जाएगा और फरिश्ते किनारों पर चले जाएंगे और 8 फरिश्ते अर्श को उठाए हुए होंगे। क्या अर्श ही रब ताला की जाय नशिस्त है, और ये 8 फरिश्तों के अर्श के उठाए जाने पर रोशनी डालती है। अब ये भी खासी तफसील से इस पे हमारी बात होती रही है। उन 8 फरिश्तों के नाम भी मैंने अर्ज किए थे, अल्लाह ताला की जो वर्चुअल नशिस्त है वो कहाँ है, किस शक्ल की है, उसके नीचे क्या है, उसके पीछे क्या दिखाई देता है, ये बहुत डिटेल में यहां मैं अर्ज कर चुका। वो मुझे तो सीढ़ी याद नहीं होगी, यहां जो साहबान ऑर्गेनाइज करते हैं इन चीजों को उनसे आप फरमाइए, वो आपके हुक्म की तामील कर देंगे और वो सीढ़ी निकाल कर आपको दे देंगे, उन्हें सुन लीजिए। और वही सीडीज मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो तीसरी किताब आएगी उसमें वो तहरीर शक्ल में भी ये चीजें आ जाएंगी। लंबे सब्जेक्ट्स हैं, मुख्तसर हूं तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, आप उन सीडीज को सुन लीजिए, उसमें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी, उन फरिश्तों के नाम भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आपसे आइंदा नशिस्त तक के लिए इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज़।